सुबह का वक्त था। हवेली के बाहर गाड़ी आकर धीरे से रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और सुषमा देवी दरवाजे से बाहर निकली। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मन का बोझ। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस हवेली की तरफ देखा जहां पिछले कुछ महीनों में उन्हें अपनापन मिला था, और फिर धीरे से मुड़कर आगे बढ़ गईं। कुछ ही देर बाद वो अपनी हवेली के बाहर खड़ी थीं। ये हवेली भी बड़ी थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाज़ा, लेकिन माहौल पहली वाली हवेली जैसा नहीं। यहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारों में ही अपनापन कम हो। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का पल जैसे उनका इंतज़ार कर रहा था। हॉल में अविनाश, सुजीत, सुप्रिया और नंदिनी चारों खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खींच। सबसे पहले सुजीत ने ताली बजाते हुए कहा, आइए आइए माँ। उसकी आवाज़ में मिठास कम, पन ज़्यादा था। कैसी हैं आप? वो आगे बढ़ा, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। बड़े दिनों बाद याद आई हमारी? सुषमा देवी चुप रहीं, बस हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। सुजीत ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो आपने कहा था 15 दिन के लिए बहन से मिलने जा रही हूँ। वो हल्का सा हंसा, लेकिन ये क्या, 4 महीने की छुट्टी मनाकर आ रही हैं आप तो? हॉल में हल्की सी कड़वी हंसी गूंज गई। अविनाश ने भी बात पकड़ ली, क्या हुआ माँ, इतनी चुप क्यों है? वो पास आया और ऊपर से नीचे तक उन्हें देखने लगा। और ये क्या हालत बना ली है आपने? उसने तंस कसते हुए कहा, वहाँ हवेली का खाना खाकर काफ़ी सेहत बन गई है आपकी, पहले से तो कहीं ज़्यादा। उसकी नज़रें साफ थीं, जैसे वो उनकी भावनाओं को नहीं सिर्फ उनका बदन देख रहा हो। सुषमा देवी के होठ हल्के से कांपे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी सुप्रिया ने धीरे से कहा, छोड़िए भी, लेकिन उसकी आवाज़ में भी कोई खास अपनापन नहीं था, बस औपचारिकता। और तभी नंदिनी आगे आई, छोटी बहू, तेज नज़रें और उससे भी तेज लहसा। बस कीजिए आप लोग, उसने सबको रोकते हुए कहा, अभी अभी बाहर से आई हैं, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। एक पल के लिए सुषमा देवी को लगा शायद कोई तो है जो समझता है, लेकिन अगले ही पल नंदिनी का असली लहजा सामने आ गया। वो मुड़ी और पास रखी एक बाल्टी उठाई। उसमें गंदे कपड़े भरे हुए थे, पसीने की गंध, मिट्टी के दाग, सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने वो बाल्टी सीधे सुषमा देवी के हाथ में थमा दी। ये लीजिए, उसने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, इतने दिन बाहर रहकर आई हैं, अब थोड़ा घर का काम भी कर लीजिए। ये कपड़े अच्छे से धो दीजिए, बहुत दिनों से पड़े हैं। हॉल में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सुषमा देवी के हाथ बाल्टी के वजन से नहीं, उस पल के बोझ से कांप गए। उनकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं और नंदिनी के चेहरे पर टिक गईं। वहां कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं, बस सीधा आदेश। अविनाश और सुजीत चुपचाप खड़े थे, ना उन्होंने रोका ना कुछ कहा, बस देखते रहे जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। सुषमा देवी की उंगलियां बाल्टी के किनारे पर कस गईं। उनके कानों में शामली की आवाज़ गूंज गई, वादा कीजिए फिर आएंगी। उनकी आंखों के सामने वो हवेली घूम गई, जहां उन्हें माँ कहकर बुलाया जाता था, जहां उनके लिए कुर्सी खींची जाती थी, जहां उनकी थाली पहले लगती थी, और यहां अपने ही घर में हाथ में गंदे कपड़ों की बाल्टी। उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, लेकिन आंसू गिरे नहीं। उन्होंने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, बस इतना ही कहा। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक टूटा हुआ सन्नाटा था। वो मुड़ी और धीरे धीरे वॉश एरिया की तरफ बढ़ गई, हर कदम भारी। पीछे हॉल में फिर से हल्की सी बातचीत शुरू हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस पल एक माँ के दिल में कुछ टूट चुका था। वॉश एरिया में नल से पानी बह रहा था। सुषमा देवी ने बाल्टी नीचे रखी और एक कपड़ा उठाया, हाथ पानी में डाला तो जैसे एक झटका सा लगा, ठंडा पानी और उससे भी ठंडी हकीकत। उन्होंने कपड़ा मसलना शुरू किया, लेकिन आंखों के सामने बार बार वही दो तस्वीरें आ रही थीं, एक जहां उन्हें इज्जत मिलती थी और दूसरी जहां वो सिर्फ काम करने वाली बन गई थी। उनके होठ कांपे और इस बार एक आंसू चुपचाप गिर ही गया, पानी में मिलकर गायब हो गया। शायद उन्होंने धीरे से खुद से कहा, अपना घर हमेशा अपना नहीं होता। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक एहसास भी कि अब कुछ बदलना पड़ेगा, और उसी पल उनके अंदर कहीं एक फैसला जन्म ले चुका था, धीरे धीरे लेकिन पक्का। हवेली में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, सुषमा देवी के जाने के बाद जैसे रौनक ही साथ चली गई हो। रत्ना देवी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, नजर बाहर थी लेकिन देख कुछ नहीं रही थी। सामने टेबल पर खाना रखा था पर छुआ तक नहीं गया, उनकी उंगलियां बस प्लेट के किनारे को हल्के हल्के छू रही थीं, जैसे मन कहीं और अटका हो। इतने सालों बाद साथ समय मिला था, उन्होंने धीमे से खुद से कहा, और वो भी यूं ही चला गया। उनकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। तभी
दूसरी तरफ दरवाजा धीरे से खुला। शामली अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। इलायची वाली चाय, रत्ना देवी की पसंदीदा। शामली बिना कुछ बोले उनके पास आई और ट्रे टेबल पर रख दी। माँ, उसने नरमी से कहा, आपने कुछ खाया नहीं ना? रत्ना देवी ने हल्की सी नजर उठाई। मन नहीं है बेटा। शामली उनके पास बैठ गई और धीरे से कप उठाकर उनके हाथ में थमा दिया। तो कम से कम ये पी लीजिए। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि रत्ना देवी मना नहीं कर पाई। उन्होंने कप पकड़ लिया, एक छोटा सा घूंट लिया और जैसे थोड़ी गर्माहट उनके अंदर उतर गई। शामली मुस्कुराई, देखिए आपको जो पसंद है वही बनाई है मैंने। कुछ पल खामोशी रही, फिर शामली ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत कीजिए, उसने हल्के से कहा, हम उनसे मिलने जाएंगे जल्दी। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा। इस बार नजरों में हैरानी भी थी और सुकून भी। तुम, उन्होंने धीरे से कहा, तुम सच में मेरी बहू हो। शामली हल्का सा मुस्कुराई और उनका हाथ और कसकर थाम लिया। कमरे में अब वही खामोशी थी, लेकिन इस बार वो सुकून वाली थी।